Good morning to all of you.
Good morning.
Om Shanti.
Om.
Welcome to all of you. Today we are going to do self-empowerment. Everybody wants to empower, isn't it? Yes or no?
Yes.
For that we go to gym, we go for yoga. But they are all for the empowering the body, not for the mind. Yesterday, our DG said, self-empowerment has come from the self-realization. We see, and as SM Godmode ji ne bhi kaha, ki jis din aapke paas kaam zyada hota hai, jis din aapke paas stress level zyada hai, us din aap aur zyada meditation kijiye. Yadi aap 15 minutes meditation karte hain, to us din aap half an hour meditation kijiye. तो आपका काम भी परफेक्ट होगा और स्ट्रेस लेवल भी खत्म हो जाएगा. तो इसी टॉपिक को लेकर हमारे बीच में आज हैं सिस्टर दीपा. शी इज एसोसिएटेड विद ब्रह्मा कुमारी सिंस हर चाइल्डहुड. शी हैज डेडिकेटेड हर लाइफ सिंस 34 इयर्स. नाउ शी इज ए सेंटर इंचार्ज ऑफ बिरले पार्ले सेंटर इन मुंबई. कल हो गया. कल भी इतना ही हुआ था, इसके आगे नहीं हुआ था.
बेस्टी,
ठीक है. ओम शांति. ओवर टू हर.
थैंक यू विमला दीदी फॉर योर लविंग वर्ड्स. कल जैसे हमने बहुत सारी बातें सुनी राजयोग के बारे में, उसको अगर एक जीवन शैली के रूप में हम अपनाते हैं तो उसके फायदे के बारे में भी हमने अनुभव के रूप में सुना. तो आज उसका हम पहला लेसन अर्थात स्वयं की पहचान, इसके बारे में हम आज देखेंगे. ये वास्तव में तो सबसे महत्वपूर्ण लेसन है, क्योंकि शायद हम सब कुछ जानते हुए अपने आप को संपूर्ण रूप से नहीं जान पाए हैं. शायद अपने व्यस्त जीवन में इसके लिए हमने समय नहीं निकाल पाए हैं. कोई भी चीज़ के लिए अगर हम समय नहीं निकाल पाते हैं, उसको महत्व नहीं दे पाते हैं, इसका संकेत है कि शायद उसके लिए हमें इतना प्यार नहीं है. तो हमने अपनी बहुत सारी जिम्मेवारियां निभा रहे हैं और बहुत सक्षम है और उसका बहुत बड़ा योगदान है समाज को, भारत को. लेकिन साथ साथ स्वयं के बारे में जानना, स्वयं को पहचानना और उसको सशक्त रखना, ये हमारी पहली जिम्मेवारी है. तो प्रश्न उठता है कि हम तो अपने आप के साथ सदा हैं, तो इसलिए स्वयं को जानने का प्रश्न कहाँ से उठता है. लेकिन जब भी हमें अपना परिचय भी देने के लिए कहा गया हो, तो हम अपना परिचय किस रूप से देते हैं? आपको जब भी परिचय देने के लिए रिक्वेस्ट किया गया, तो पहले आप अपना नाम बताते हैं और फिर क्या बताते हैं? कहाँ आपकी पोस्टिंग है, अभी आप कहाँ जिम्मेवार हैं वो बताते हैं, पोजीशन के बारे में बताते हैं, आपकी जो उपलब्धियाँ हैं कार्य क्षेत्र पर उसके बारे में बताते हैं, परिवार किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, शायद कौन सी आपकी भाषा है. तो इस सारी जानकारी जो हम बताते हैं, हमारे अनुभव कार्य क्षेत्र के, तो ये सारी जानकारी के साथ साथ एक शब्द आता है मेरा. मेरा नाम, मेरा कार्य, मेरी जिम्मेवारियां, मेरे संबंध, मेरा क्षेत्र, कार्य क्षेत्र, मेरा स्टेट, मेरी भाषा, मेरा धर्म और साथ साथ मेरा शरीर. हम रोज मिरर में, आईने में जिसको देखते हैं, उसी को हमने अपना अस्तित्व, संपूर्ण अस्तित्व समझा. और वो तो हम देखते हैं, जिसको अभी हमने थोड़े समय पहले भी बहुत अच्छी तरह से एक्सरसाइज किया, उसको स्वस्थ रखने के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है. और हमें बहुत खुशी है, आपसे हम प्रेरणा लेते हैं कि आप तो इसको अपने एक रोज के जीवन में ही, रोज सुबह उठकर इसको एक बहुत प्यार से और बहुत डिसिप्लिन से आप फिजिकल फिटनेस के लिए ट्रेनिंग करते हैं. तो ये बहुत ज़रूरी है और इसी को हमने अपना संपूर्ण अस्तित्व समझा. लेकिन ये शरीर भी क्या है? मेरा शरीर है. मेरा शरीर कहते हैं मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरा मुख, मेरा शरीर. तो मैं कौन? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब भी हम अपने आप से ये प्रश्न पूछें कि मैं कौन, तो आज तक तो हमने जो भी मेरा कहा उसी को मैं समझा और उसी के आधार से कारोबार किया। लेकिन अब हम समझ रहे हैं कि ये तो सब कुछ मेरा है। जैसे ये मेरा रुमाल है तो ये मेरे से अलग है और मैं इसको प्रयोग करने वाली मालिक हूँ। ऐसे ही जिस जिस चीज के लिए हमने मेरा कहा, कार्य है, कार्य क्षेत्र है, परिवार है, जिम्मेवारी है, रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो सब मेरा है, माना मुझसे अलग है और मैं उसको प्रयोग करने वाली मालिक हूँ। तो मैं मालिक कौन? मैं कौन? ये प्रश्न हम अपने आप से पूछते हैं। डायलॉग होगा तो अच्छा रहेगा। पूछते हैं ना, तो क्या जवाब आता है? आज तक तो हमने हमेशा शरीर को ही मैं समझा, और हमने भी समझा था जब तक हमने राजयोग नहीं सीखा। लेकिन अब हमने मैं शब्द का उत्तर क्या आता है? आत्मा शब्द आता है। लेकिन वास्तव में हम अपने दैनिक जीवन में ये आत्मा शब्द या इसकी स्मृति तो कभी याद ही नहीं करते हैं, नहीं? 24 घंटे में कितने सेकंड्स भी ये फीलिंग रहती है, स्मृति रहती है कि मैं आत्मा हूं? नन, बिल्कुल नहीं। शायद ये हमें याद कब आता है? जहां कभी हम अपने कोई फेलो कलीग को समाचार सुनते हैं कि उन्होंने अपना बलिदान दिया देश सेवा के लिए, या ऐसे कोई परिवार या मित्र संबंधी का देहांत होता है, तो तब हम मैसेज भेजते हैं। क्या मैसेज भेजते हैं? लेट द सोल रेस्ट इन पीस, RIP। तो किसको शांति में जाना चाहिए? क्योंकि शरीर को तो हमने तत्वों को सौंप दिया, नहीं? उसका अंतिम संस्कार करके तत्वों को सौंपा। हर एक धर्म में अलग विधि है, लेकिन सौंपना तो तत्वों को ही है शरीर। तो इसलिए उसको तो समाप्ति उसकी तो हो गई, फिर किसके लिए कहा कि रेस्ट इन पीस? किसको शांति में रहना है अभी? आत्मा को। तो उसी समय शायद ये शब्द हमारे मन में, हमारे जहन में आता है। लेकिन फिर हम क्या हो जाते हैं? बिजी हो जाते हैं रूटीन कारोबार में, तो फिर इन चीजों को भूल जाते हैं। लेकिन वास्तव में अगर मैं आत्मा हूं, तो मैं आत्मा सारा दिन इस शरीर के द्वारा अपना कार्य करा रही हूं। तो ये स्मृति में रहना आवश्यक है, आवश्यक है। दुनिया में हम कहते हैं ना कि कोई अगर अपने आप को भूल जाए या अपने जिम्मेवारी को नहीं महसूस करे, तो हम कहते हैं ये आइडेंटिटी क्राइसिस है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ भी एक आइडेंटिटी क्राइसिस है ना? जिसको हमने मेरा समझा, मेरा कहा, आत्मा वो मैं है और जो मैं है वो मेरा है। हमने कहा मेरी आत्मा, लेकिन आत्मा मेरी नहीं है, मैं आत्मा हूँ और शरीर मेरा है। तो इस शरीर को हमने अच्छी तरह जाना, कारोबार को जाना, जिम्मेवारी जो भी आपकी साथ जुड़ी हुई है, वो सब चीजों को आप अच्छी तरह से समझते हैं, जानते हैं, समय देते हैं और उसका बहुत सुंदर उसका कार्य की व्यवस्था जो है आप कर रहे हैं, उसकी सुंदर आप मैनेजमेंट कर रहे हैं, बहुत आवश्यक है। लेकिन ये सब कुछ जो हम कहें मैनेजमेंट करने वाली, कार्य कराने वाली जो मालिक है, उसकी अंतर की जो हमारी संस्था है, उसका कितना हम अच्छी तरह से मैनेजमेंट कर रहे हैं, ये हमें आज चेक करना है। जरूरी है, जरूरी है। क्योंकि अगर मालिक अपने आप को भूल जाए, शरीर तो हमने देखा एक साधन है, सबसे सुंदर एग्जाम्पल है कि शरीर एक व्हीकल है और इस व्हीकल को चलाने वाला मैं, जो इसका सूक्ष्म सटल ड्राइवर है, वो आत्मा है। उसको हम आत्मा कहें, ऊर्जा कहें, स्पिरिचुअल एनर्जी कहें, रूह कहें, स्पिरिट कहें, जो शब्द आप कहना चाहो, साइंस उसको मेटाफिजिक्स कहता है। फिजिकल मेटाफिजिकल। तो हम देखते हैं कि इस ऊर्जा को इस शरीर का नियंत्रण करना है, मालिक है वो। तो अगर मालिक भूल जाए, ड्राइवर भूल जाए कि मैं इस गाड़ी को चलाने वाला हूं, तो क्या हो जाए, क्या हो जाएगा? या उसको नींद आ जाए तो क्या हो जाए? हम तो उसमें नहीं बैठना चाहेंगे ना, रिस्क नहीं ले सकते। तो ऐसे ही आज हम देखते हैं कि आत्मा तो भूल गई है अपने आप को, नहीं, विस्मृति हो चुकी है। मैं मालिक हूं ये स्मृति नहीं, कार्य तो करा रही है लेकिन मालिक होकर नहीं कार्य करा रही। तो इसलिए मालिक न होने के कारण उसके पास पूरा कंट्रोल जो है वो नहीं है। जब आप अपनी जिम्मेवारी में जाते हैं तो आपको अपने रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज इमर्ज रहती, स्मृति में रहती, तब मालिक होकर आप कंट्रोल करते, आप डायरेक्शन देते हैं, कार्य कराते हैं। आपके सीनियर्स आपको जो डायरेक्शन देते हैं उसको आप तुरंत इम्प्लीमेंट करते हैं, नहीं, ये रूटीन है ना आपके कारोबार में। लेकिन आज आप देखिए, हम अपने मन को जो डायरेक्शन देते हैं, मन हमारा डायरेक्शन मानता है, सारा समय मानता है, कंसिस्टेंटली मानता है, मानता है। आप यहां जब से बैठे हैं एक्सरसाइज के बाद से, आपके मन को आपने डायरेक्शन दिया, यहां बैठकर जो बातें कही जा रही है वो सुनना है, लेकिन आपके मन ने यहां आपका डायरेक्शन माना, ना चाहते भी क्या किया, थोड़ा सा चक्कर लगा के आ जाता है, आता है। हाँ, तो हमारा मन हमारा 100% डायरेक्शन नहीं मान रहा है। और हम देखते हैं कि कभी कभी जब भी हम थोड़ा आवेश में आ जाते हैं, थोड़ा रिएक्ट करते हैं अपसेट होने के कारण, कोई भी बात, कारोबार में जिम्मेवारी में आप हैं तो कोई चीज ठीक नहीं लगी और वो बहुत इम्पोर्टेंट थी, तो आप थोड़ा आवेश में आ ही जाते हैं, गुस्सा आ जाता है। तो उस समय आवेश में आने के पहले, उसको व्यक्त करने के पहले, हमारा अंतर मन हमें क्या डायरेक्शन देता है? अंतर मन, इनर वॉइस, कॉन्शियंस, हमें क्या डायरेक्शन देता है, गाइडेंस देता है? गुस्सा करना है, नहीं करना है? अंतर मन हमें क्या कहता है? नहीं करना, समझा दो, अभी गुस्सा नहीं करो, बाद में बताना, नहीं कहता भी है ना। हम इस अंतर मन के डायरेक्शन को मानते हैं, कभी कभी मानते हैं, लेकिन मोस्टली तो हम नहीं मानते, ओवर पार कर लेते, नहीं नहीं जरूरी है, फिर बाद में टाइम नहीं मिलता है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, बार बार रिपीट होगा आगे और डिफिकल्टी होगी, नहीं हम जस्टिफाई करके ओवर पार करके उस समय तो अपना क्रोध व्यक्त कर लेते हैं। तो हम देखते हैं कि अंतर मन की संस्था में डायरेक्शन देखकर कार्य कराना, डायरेक्शन प्राप्त करके कार्य कराना, इनर ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं चल रहा है ठीक से, नहीं, कितना सिंपल है, लेकिन अंतर की संस्था में ये डिसिप्लिन नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इस अंतर की संस्था को हम जानते नहीं हैं और इसलिए इसको सक्षम रखने की जिम्मेवारी हमने नहीं ली है। जैसे हमने शरीर को सक्षम रखने की, कारोबार को ठीक से सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेवारी ली, इसलिए उस वहां महत्व दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, योगदान दे रहे हैं, अटेंशन दे रहे हैं, सारा दिन न चाहते भी उसका चिंतन करते रहते हैं। लेकिन अंतर स्व को जानते नहीं है, इसलिए उस अंतर की संस्था को न जानने के कारण, उसको महत्व न देने के कारण उसके प्रति जिम्मेवारी भी नहीं ले पाते। तो आज हम पहले उसको जानेंगे और फिर देखेंगे कि इसको हम सक्षम लेने की जिम्मेवारी कैसे लें। तो हम देखते हैं कि पहले आंतरिक स्व और बाह्य स्व, ये दोनों का अंतर हम समझ लेते हैं। आंतरिक स्व जो हमने कहा, ये आध्यात्मिक शक्ति है जिसको हमने आत्मा कहा, जिसके पास तीन मुख्य शक्तियां हैं, जिसको हम देखेंगे कि हर एक शक्ति कैसे कार्य करा रही है और इस आंतरिक स्व के द्वारा जो हम कार्य करा रहे हैं, जिसमें आपकी जिम्मेवारियां है, आपके संबंध है, कारोबार, वो हमारा बाह्य स्व, आप नोट्स तो लिख सकते हैं, लेकिन बाद में आपको प्रेजेंटेशन भी दिया जाएगा। तो हम देखते हैं कि हमारा बाह्य स्व क्या है, हमारे रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेवारी, कारोबार, हमारे साधन, पोजेशन, स्किल सेट, कॉम्पिटेंसीज, टैलेंट, जो भी हमारी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज हमने प्राप्त की है। फिर हम सबसे महत्वपूर्ण हमारा शरीर, हमारे संबंध, हमारी जो कारोबार है, दैनिक रूटीन की कारोबार, हमारी उपलब्धियाँ, पोजिशन, आपकी जो भी अचीवमेंट्स है, आपकी विचारधारा, आपका धर्म, आपकी भाषा, तो ये सब कुछ मेरा है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आंतरिक स्व की क्षमताओं को समाज में, कारोबार में व्यक्त करने का साधन ही बाह्य स्व है। तो बाह्य स्व का महत्व कम नहीं है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो बहुत बहुत जरूरी है। इसलिए उसको सक्षम रखना, जो हमने जिम्मेवारी ली है, वो बहुत जरूरी है। लेकिन अंतर ये है कि हमें अपने कारोबार में, अपने जीवन में, अगर हमें सदा आनंदित रहना है, स्वस्थ रहना है, आगे बढ़ते रहना है, तो दोनों में से, आंतरिक स्व और बाह्य स्व में से मालिक किसको होना चाहिए? Who should be the boss? Who should have the choice for deciding? Power to take decisions. किसको होना चाहिए? आंतरिक स्व को। इस समय किसके पास है, मालिक कौन है? बाह्य स्व। अब क्यों मालिक होना चाहिए आंतरिक स्व को? क्या अंतर है दोनों में से, जो सबसे महत्वपूर्ण अंतर है? कौन सा अंतर है जी? ओरिजिनल है। अच्छा, ये आर्टिफिशियल है? अच्छा, प्राप्त किया हुआ है। आपका भाव ये है कि वो ओरिजिनल है, आंतरिक है, इनेट है, हमारे पास सदा है, अविनाशी है, जिसके लिए हमने गीता में भी सुना है कि आत्मा अजड़, अमर, अविनाशी है, शक्ति है, स्पिरिचुअल एनर्जी, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, तो परमानेंट है, ओरिजिनल है, वो हमारी इनेट पावर है। हमारा बाह्य स्व क्या है? परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील है, प्राप्त किया हुआ है, इट्स बीन एक्वायर्ड, सो इट्स ऑलवेज इन्फ्लुएंस्ड बाय चेंज, परिवर्तनशील है, उसमें परिवर्तन होता ही रहता है। अब जैसे हमारा रोल है, परिवर्तन होता है, आपने जो आर्म फोर्सेस ज्वाइन किया तब से आज तक तो कितने परिवर्तन आए हैं, जरूरी था ना ग्रोथ के लिए, तो परिवर्तन तो होता ही है। फिर हमारे इमेज, हमारे साधन, हमारे स्किल्स बदलते रहते हैं, आप एनहांस करते जाते हैं, आप आगे बढ़ते जाते हैं, अपने आप को और सक्षम बनाते हैं। शरीर बदलता है, रोज मिरर हमें बताता है कि ये शरीर बदल रहा है, ना चाहते हुए भी बदल तो रहा है। संबंध बदलते हैं, संबंध कितने बदल रहे हैं, नहीं कितने हम देखते हैं वर्षों से, जेनरेशंस में संबंध बदलते जा रहे हैं। आपके माता पिता, हमारे माता पिता ने हमारे पालना जैसे कि हमें जैसे गाइड किया, हमें जैसे पाला, आज हम बच्चों को उसी प्रकार से, उसी थॉट प्रोसेस से चला सकते हैं? रिलेशनशिप हैज चेंज्ड, नो, बिटवीन पेरेंट एंड चाइल्ड, पेरेंट्स आर स्टिल पेरेंट्स, बट स्टिल आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद जब बच्चा योग्य बन जाता है, बड़ा हो जाता है, तो वो क्या चाहता है पेरेंट और क्या बने? पेरेंट कम और क्या ज्यादा बने? फ्रेंड, मोटिवेटर, कोच, मेंटोर, नहीं, हमेशा अवेलेबल रहे, इंटरफियर नहीं करे, अवेलेबल रहे, नहीं। तो हम देखते वो रिलेशनशिप चेंज हो गया, चेंज हो गया है, ऑर्गेनाइजेशन में भी चेंज हो गया, एज अ सीनियर आपका रोल जो है वो भी बदलता है, परिवर्तन होता है, चेंज हो रहा है। तो उस रूप में हम देखते हैं कि यहाँ परिवर्तन हो रहा है। दीदी यहाँ बैठ सकते, तो हम देख रहे हैं ये परिवर्तन होने के वजह से अगर ये मालिक हो जाए तो क्या होगा? मालिक होना माना हमारे जीवन की खुशी, हमारे जीवन की प्रगति, हमारे जीवन का आनंद, हमारे जीवन का सुख अगर हमारे बाह्य स्व के ऊपर आधारित हो, हमारी ग्रोथ हम फील करें उसी के आधार पर है, तो क्या होगा? अब रोल हमारा इम्पोर्टेंट है, लेकिन शायद थोड़ी जिम्मेवारी वो एरिया की जहां आपकी पोस्टिंग है वहां थोड़े चैलेंजेस और आ रहे हैं, तो शायद हमारे सीनियर्स को लगा कि हमें एक और सपोर्ट जरूरी है, तो एक और व्यक्ति को भी वहां लाया गया जो आपके ही पोजीशन पर है, और उसको भी कुछ उसमें से जिम्मेवारी दी गई। सिचुएशंस वहां थोड़े डिफिकल्ट थे, कई बार सेंसिटिव हो जाते सिचुएशंस। अब उस व्यक्ति को लाया गया और उसको भी कुछ पोर्शन की जिम्मेवारी दी गई। कारोबार में आपको महसूस हो रहा है कि वो व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट सीनियर से ज्यादा है। हर बार जब मीटिंग होता है, कुछ निर्णय लेना होता है, तो उनको पूछा जाता है, उनको ज्यादा इन्वॉल्व किया जाता है, उनके विचारों को महत्व दिया जा रहा है। तो अब हमें क्या महसूस होगा? हम अपने रोल को महसूस कर रहे हैं कि अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं, उनका रोल ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, तो हम क्या फील करेंगे? हमारी खुशी, हमारी प्रगति, हमारी ग्रोथ, हमारा अंदर का एक आंतरिक सुख जो है वो क्या होगा? थोड़ा कम हो जाएगा। हमें लगेगा नहीं, ये इनको महत्व दिया जा रहा है, मुझे तो निग्लेक्ट किया जा रहा है, मेरे विचारों को महत्व ही नहीं दिया जा रहा है, मुझे पूछा ही नहीं जा रहा है, मैं तो इतने समय से यहाँ कारोबार कर रहा हूँ, मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी। तो अगर हम अपने स्किल्स या जो भी हमारी क्षमताएं उपलब्धियां हैं उसके आधार से हमारी ग्रोथ है। अब हम देखते हैं टेक्नोलॉजी भी चेंज हो रही है, सब कुछ परिवर्तन हो रहा है, युवा शक्ति तो और मजबूत होती जा रही है, तो कोई और भी उसमें नवीनता आ रही है, किसी व्यक्ति की जो आपसे और भी पीछे आए हैं लेकिन उनकी उपलब्धियां उस रूप से आपसे भी ज्यादा हो गई, कारोबार में, चैलेंजेस में, टेक्नोलॉजी भी एडवांस हो रही है, तो वो क्षमताएं ज्यादा है और उस रूप से उनका, उनकी क्षमताओं का गायन है, अभी महत्व दिया जा रहा है। तो अब जो हमें अपनी अचीवमेंट्स का सुख था उसी के आधार से हम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को फील कर रहे थे, अब किसी और की अचीवमेंट्स उससे ज्यादा है, तो क्या होगा हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट, क्या होगा? तो अगर हमने बाह्य स्व को अपने खुशी का, आनंद का, सुख का, ग्रोथ का, अपने सेल्फ एस्टीम का आधार बनाया तो क्या होगा? रोलर कोस्टर राइड। नहीं, फिर हम जिम्मेवारी में न रहेंगे तो क्या होगा? पोजीशन नेचुरली जिम्मेवारी में नहीं रहेंगे, बाद में जब रिटायर हो जाते हैं तो भी हम किस बात के महत्व को अपने फील करते हैं, हम कॉन्फिडेंट का फील करते हैं जब हमें कहा जाता है एक्स सो एंड सो। नहीं, लेकिन हमारा जो आंतरिक व्यक्तित्व है वो परमानेंट है, तो वो जब हमारी खुशी का आधार बन जाता है, वो जब हमारी संतुष्टता का आधार बन जाता है, हमारी ग्रोथ का आधार बन जाता है, हमारे स्वमान का आधार बन जाता है, तो क्या हो जाता है? हमारी स्थिति हमेशा स्थिर रहती है, शक्तिशाली रहती है, और वहां तो जितनी प्रगति करना चाहे हम करते जा सकते हैं, वो प्रगति हमारे साथ ही चलती है। जितना हम अंतर में अपने आप को और शक्तिशाली, मनोबल को भरपूर करते हैं, अपने आप को और सहनशील बनाते हैं, और हमारे अंदर की दृढ़ता को बढ़ाते हैं, और हमारे अंदर की शालीनता को बढ़ाते हैं, और हमारी परख शक्ति, निर्णय शक्ति को बढ़ाते हैं, तो ये सारा विकास क्या होगा? सदा काल के लिए है। तो इसमें हम मालिक सदा रहते हैं, हम कोई भी परिस्थिति में हलचल में नहीं आते हैं, आते भी हैं तो बहुत जल्दी ही अपने आप को फिर से उस मालिकपन की स्थिति में स्थित करते हैं। इसलिए इसका नाम राजयोग है, मालिक बनना, विक्टिम अवेयरनेस में नहीं, विक्टिम कॉन्शियसनेस में नहीं, ये ऐसा हुआ इसलिए मैं अपसेट हो गया, ये ऐसा हुआ इसलिए मुझे दुख हुआ, ये ऐसा हुआ इसलिए मुझे गुस्सा आया, ये ऐसा हुआ इसलिए मैं लो फील कर रहा हूँ, ये क्या है? विक्टिम अवेयरनेस, विक्टिम कॉन्शियसनेस। और ये ज्ञान से, राजयोग से हम हमेशा क्या रहते हैं? मालिक रहते हैं। किसके? अपने शरीर की और अपने जीवन के, बहुत इम्पोर्टेंट है वहाँ मालिक रहना। वहाँ मालिक है तो औरों को दिशा देना सहज हो जाएगा, औरों के कार्य कराना सहज हो जाएगा। तो ये आंतरिक स्वाज मालिक क्यों नहीं है? जान कहे कि जरूरी है इसको मालिक बनना, लेकिन क्यों नहीं? क्यों बाह्य स्व इसको डोमिनेट कर रहा है, इसका मालिक बनकर कार्य कर रहा है? तब तो हम कहते ना, क्या करें, नहीं करना था फिर भी आ गया गुस्सा, क्या करें, नहीं बोलना था, मुझे पता था, परिवार में भी हम महसूस करते नहीं बोलना था लेकिन बोल दिया। तो वो क्यों मालिक नहीं है आज आंतरिक स्व? एक्सप्लोर नहीं किया। सुबह से रात तक कितना टाइम, एनर्जी, समय, महत्व हमने दिया अपने बाह्य स्व को सक्षम बनाने में, और कितना टाइम दिया अपने आंतरिक स्व को सक्षम बनाने में? मेजर डिफरेंस बहुत ज्ञात है। आंतरिक स्व के लिए तो बिल्कुल समय नहीं दिया, इसलिए आज वह क्या है, बाह्य स्व के अधीन है, अधीनता है। उसको फिर से मालिक बनाना, यह है राज्यों की जीवन शैली। हम देखते हैं कि जब हम अपने को मनुष्य आत्मा कह रहे हैं, तो मनुष्य, ह्यूमन, कम्स फ्रॉम द वर्ड ह्यूमस, अर्थात हमारा बाह्य स्व, हमारा शरीर जो पांच तत्वों से बना हुआ है, और ये शरीर को चलाने वाली ये दिव्य ऊर्जा, ये सुंदर लाइट, या ये बीइंग ऑफ एनर्जी जिसको हमने आत्मा कहा, बीइंग, ह्यूमन बीइंग। तो हमने शब्द में जरूर कहा ह्यूमन बीइंग, लेकिन अवेयर किसके हैं? सिर्फ ह्यूमन। डूइंग की अवेयरनेस में बीइंग की अवेयरनेस मिसिंग है। अब हम इस बीइंग को जानकर इसकी अवेयरनेस में रहकर कार्य करेंगे। जैसे हमने एग्जाम्पल देखा कि आत्मा का रोल क्या है शरीर में, वो ड्राइवर है। अब ड्राइवर कहाँ बैठेगा गाड़ी में? ड्राइवर कहाँ बैठता है? ड्राइविंग सीट में। वहां ड्राइविंग सीट कैसे फिक्स हुई? आगे, आगे क्यों रखा है उसको आपने? आगे ड्राइविंग सीट क्यों रखा जी? कंट्रोल सिस्टम, उसके सारे वहां इंजन आदि, एक्सेलरेटर, सब कुछ, और टू सी, वहां से दिखाई देगा व्हीकल आना, तो विंडोज वहीं हैं। वहां रहकर ड्राइवर सारे गाड़ी को कंट्रोल कर पाता है, या अगर उसको रिवर्स लेना है तो उतर कर फिर से बाहर? नहीं, वहां बैठकर वो सारे गाड़ी को कंट्रोल कर लेता है। ऐसे आत्मा ड्राइविंग सीट में बैठकर सारे शरीर को कंट्रोल कर रही है। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ कंट्रोल क्या है? हमारा मस्तिष्क, हमारा ब्रेन, हमारा न्यूरो सिस्टम जो है, आंखें देखने के लिए विंडोज है, कान सुनने के लिए, जानकारी अभी आप सुन रहे हैं, मुख बोलने के लिए। तो ये सबसे महत्वपूर्ण जो हमारी कर्म इंद्रियां हैं, वो कहाँ है? चेहरे में। और इसलिए चेहरे में ही आत्मा निवास करती है। अभी आत्मा ऊर्जा है, ऊर्जा कैसे होती है? लाइट। मैटर इज हैवी एंड एनर्जी इज लाइट। तो ये ऊर्जा लाइट होने के कारण ऊपर में है। बोतल, एक ग्लास में आपने पानी में थोड़ा सा, एक बूंद ही तेल डाल दिया, कहाँ होगा? ऊपर में फ्लोट करेगा। तो ऐसे आत्मा भी ऊपर में, इस चेहरे में, ब्रुकुटी के मध्य में निवास करती है, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बाजू में। आंखों के पीछे उसकी ड्राइविंग सीट है, एक साइलेंट स्पेस है जहां आत्मा बैठी हुई है। इसके रिफ्लेक्स एक्शन से कई बार हमसे गलती होती है, हम कहते हैं पता नहीं क्या हुआ, सिर पर हाथ रखते रखते हाथों पर हाथ क्यों नहीं रखते? पैरों पर हाथ हमने नहीं रखा, सिर पर रखा, क्योंकि कर्म कराने वाली, निर्णय लेने वाली यहां बैठी आत्मा। सोचने के लिए भी कई बार हम चिंता करते हैं तो भी क्या होता, हाथ सिर पर चला जाता है। हम सिर पर हाथ रखकर बैठते हैं, द पोस्चर ऑफ वरिंग, नहीं, सोचने के लिए भी। तो हम देखते हैं भाग्य के लिए भी हम कहते हैं, कभी किसको लगा कि नहीं उसने अच्छा कर्म किया है इसलिए भाग्य अच्छा नहीं है, तो फिर सिर पर रखते हैं, पता नहीं मेरा भाग्य ऐसा क्यों, क्योंकि आत्मा जो भाग्य बनाने वाली है, निर्णय करने वाली है, वो वहां बैठी, कंट्रोलर वहां बैठा है। ये हमारी ड्राइविंग सीट है। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो विजुलाइज करते हैं, विजुलाइजेशन में बहुत पावर है। तो विजुलाइज करते हैं कि ये मैं आत्मा, ये सुंदर दिव्य लाइट स्पार्क ऑफ एनर्जी सीटेड बिहाइंड द आईज। एग्जैक्टली देख कहा जाता है स्पेस, अगर देखना चाहे समझना चाहे तो अगर ये फोरहेड के बीच में हम एक पाइप डाल देते हैं, यहां भी बीच में पाइप डाल देते हैं, तो जहां ये दोनों पाइप मीट करेंगी वहां आत्मा बैठी। किसकी मालिक है? कर्म इंद्रियों की मालिक है। देखना, बोलना, सुनना, ये सब कौन कर रही है? आत्मा। हम आंखों से सामने देख रहे हैं लेकिन हम कुछ और सोच रहे हैं। कई बार होता है ना, ऑफिस में बैठे हैं, कुछ महत्वपूर्ण आपको आगे के लिए प्लान करना है या इसके बाद कोई निर्णय लेना है, आप वहां चले गए बुद्धि से। आंखें खुली है लेकिन सामने वाली चीज को आप देख नहीं रहे। कोई आकर बैठ भी गया, आपको पता है कि कोई आया है लेकिन आपका ध्यान अभी तक वहां नहीं गया। नहीं होता है? क्यों? क्योंकि आंखें मात्र विंडोज के रूप में है, देखने वाली कौन? मैं आत्मा। अब आत्मा इस शरीर के द्वारा कार्य कैसे कराती है? कितनी सूक्ष्म एनर्जी, एनर्जी है, इसलिए ये फिजिकल आई से हम देख नहीं सकते। मैं आपसे बात कर रही हूं तो साउंड एनर्जी है, साउंड वेव्स क्रिएट हो रहे हैं, आप सुन रहे हैं ना, कानों में जो सेंसर्स हैं वो उस साउंड वेव्स को कैच कर रहे हैं। लेकिन क्या हम देख सकते हैं आवाज के ये प्रकंपन को? देख सकते हैं? नहीं, अनुभव कर सकते हैं। एनर्जी, एनर्जी कैन नॉट बी सीन विद दीज आईज बिकॉज दीज आर फिजिकलाइज। ये शरीर के आंखें जो है तत्वों से बना हुआ शरीर, तो तत्वों की चीजों को ही देख सकते हैं, मैटर को ही देख सकते हैं। उसमें भी लिमिटेशन है लेकिन मैटर को ही देख सकते हैं। अभी आत्मा को हम इन नेत्रों से नहीं देख सकते हैं, इसलिए ज्ञान के नेत्र से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो परमात्मा आकर हमें आत्मा की पहचान देता है, आत्मा कैसे ये शरीर के द्वारा कार्य कराती है वो हमें समझ देता है। तो है इतनी सूक्ष्म आत्मा, और जैसे ये शरीर को वो छोड़ देती है तो हम क्या कहते हैं? मृत्यु हो गई, शरीर शांत हो गया। ठीक है, तो आत्मा इतनी सटल होते हुए ये सारे शरीर का नियंत्रण करती है। मृत्यु के बाद हम ऑर्गन डोनेशन कर लेते हैं, करते हैं ना ऑर्गन डोनेशन। तो अब आप सोचिए कि उस शरीर के ऑर्गन्स लेकर हम कहीं और जहां योगदान देते हैं, वो आंखें जहां योगदान में जाती है, जिनको प्राप्त होती है, वो देख पा रहे हैं, उनको नया जीवन मिल जाता है। और भी शरीर की कर्म इंद्रियां जहां भी दिया जाता है सहयोग, तो वहां उनको उससे जीवदान मिल जाता है। वो कर्म इंद्रियां तो काम कर रही है लेकिन इस शरीर में क्यों नहीं कर रही है? आंखें तो देख सकती है, इसलिए तो आपने किसी और को योगदान दिया, लेकिन उस शरीर में नहीं देख पा रही। क्यों? आत्मा नहीं है, शरीर को कार्य कराने वाली आत्मा है, मालिक वो है। तो वो इस शरीर को इस मन बुद्धि संस्कार के द्वारा चलाती है। मन का काम है चिंतन करना, सोचना, इट्स द क्रिएटिव फैकल्टी ऑफ द सोल, जो सारी रचना करती है, रचयिता है, क्रिएटर है। तो सुबह से रात तक वो रच रहा है। जो भी कार्य आप कर रहे हैं, जो आपकी पोस्टिंग्स है वहां, जो भी कार्य आप कर रहे हैं, ये सब कहीं ना कहीं रचना है, मनुष्य की रचना। आर्मी में जो आपके सीनियर्स हैं उन्होंने मिलकर सोचा कि यहाँ पोस्टिंग होनी चाहिए, उसको क्रिएट किया, उसके पूरे टुकड़ी को का आपका पूरा सिस्टम वहां क्रिएट किया, आज आप उसको मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, सो वॉट एवर वी आर ट्राइंग टू मैनेज इज द क्रिएशन ऑफ द ह्यूमन माइंड। ठीक है, समझ रहे? जो भी हम जिसकी व्यवस्था कर रहे हैं, किसकी रचना है? मनुष्य के मन की। आज हम यहाँ इस ज्ञान स्वरों में बैठे हैं तो मनुष्य के मन की प्रेरणाओं से, परमात्मा की प्रेरणाओं से और मनुष्यों ने मिलकर जो है ये पूरा क्रिएट किया और फिर स्थूल रूप से उसको क्रिएट किया। तो हम जो भी मैनेज कर रहे हैं, वी आर मैनेजिंग द क्रिएशन ऑफ द ह्यूमन माइंड। हम मनुष्य के मन की रचना को की व्यवस्था कर रहे हैं लेकिन मनुष्य मन को नहीं व्यवस्था कर पा रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू मैनेज द क्रिएशन विदाउट बीइंग एबल टू मैनेज द क्रिएटर, इसलिए थोड़ा टफ हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। रचना तो हम मैनेज कर रहे हैं, रचयिता को मैनेज नहीं कर पा रहे। अब राजयोग से हम रचना जो है उसको मैनेज करने के लिए पहले रचयिता को मैनेज कर लेंगे, मन को हम बहुत प्यार से चैनलाइज कर पाएंगे। तो मन के लिए हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं एक धारणा बनी हुई है कि मन हमारा मानता नहीं है, नहीं, मन हमारा स्थिर रहता नहीं है, मन किसी का कंट्रोल नहीं होगा। कहते मन में ऐसे हमने ये पक्का कर लिया है। ये कंट्रोल वर्ड जो है वो वास्तव में शायद इतना सही नहीं है। कंट्रोल ही करना है, लेकिन वास्तव में मन से हमें मित्रता प्राप्त करनी है, जिससे मन को हम प्यार से दिशा दे सकेंगे। अब मन सारा दिन क्या सोचता है, ये एक बहुत सुंदर प्रोडक्शन यूनिट है, लेकिन चैलेंज क्या है जी? सुनता नहीं, क्वालिटी कंट्रोल नहीं है, क्वालिटी चेक नहीं है। आपकी आर्म्स में जो भी एम्यूनिशन जिस फैक्ट्री में बन रही है वहां क्वालिटी चेक न हो तो क्या होगा, क्या होगा? आप सोच ही नहीं सकते हैं। जरूरी है हमारे मन की, आप देखिए, क्वालिटी चेक नहीं है, और हमने इसको डालने के लिए भी कभी समय नहीं निकाला, हमारे पास समय ही नहीं इसके लिए, सोचने के लिए। तो क्वालिटी चेक करते हैं तो हम देखते हैं चार प्रकार के मुख्य विचार हैं, सकारात्मक नकारात्मक हम समझते हैं, तीसरा है व्यर्थ, और फिर है साधारण। अब हर एक विचार या तो हमारी ऊर्जा को बढ़ा रहा है या ऊर्जा को नीचे कर रहा है। अब सकारात्मक विचार वो विचार है कार्य संबंधित, जिम्मेवारी संबंधित, परिवार संबंधित, शरीर संबंधित, हर एक के बात में जो भी आप चिंतन कर रहे हैं, जो भी चीजों में एंगेज हैं, जब भी आप चिंतन कर रहे हैं जिससे आपकी और उस कार्य की ऊर्जा को आप बढ़ा रहे हैं, वो सकारात्मक विचार है। तो आत्मा के जो मूल गुण है, मूल विशेषताएं हैं, उसको प्रयोग करते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा। अब जब भी हम कोई भी बात में इंगेज्ड हैं, लेकिन वहां हमारे मन से जो हम विचारों का निर्माण कर रहे हैं उससे औरों की, स्वयं की, कार्य की ऊर्जा को घटा रहे हैं, वो है नेगेटिव। और फिर थोड़ा व्यर्थ, नेगेटिव में स्पीड ज्यादा है घटाने की, व्यर्थ में है थोड़ा कम। और साधारण माना रूटीन, बढ़ा भी नहीं रहे हैं घटा भी नहीं रहे, लेकिन बढ़ाने का चांस गंवा रहे हैं। सो ऑर्डिनरी इज ऑल्सो सम सॉर्ट ऑफ वेस्ट। तो इसलिए हम देखते हैं कि हम कैसे अपने मन को प्यार से, इस ज्ञान से, मेडिटेशन से ट्रेन कर ले कि वो सारा दिन जो भी कारोबार कर रहा है लेकिन वो हमेशा अपने संकल्पों को सकारात्मक समाधान के दिशा में रख सके, ताकि क्या होगा, जो कार्य कर रहे हैं उसकी भी ऊर्जा बढ़ती जाएगी, आपकी भी ऊर्जा बढ़ती जाएगी, जिन लोगों को आप दिशा दे रहे हैं उनकी भी ऊर्जा बढ़ती जाएगी। तो वो नेगेटिव वेस्ट को पहचानना पहले जरूरी है और फिर उसको परिवर्तन करना जरूरी है। तो जैसे आजकल भी वेस्ट से बेस्ट करते, नहीं, छोटी छोटी चीजें जो वेस्ट होती, क्रिएटिव आर्ट है ना, उसमें से बहुत सुंदर कलाएं बनाना, ऐसे ही राजयोग से हम ये जो व्यर्थ और नेगेटिव विचार है उसको पहचानते हैं और उसको परिवर्तन करते हैं। व्यर्थ को पहचानना बहुत जरूरी है, हम नेगेटिव को तो पहचानते हैं, व्यर्थ को कई बार नहीं पहचान पाते। मुझे ये रूमाल यहाँ रखना था, मैं सोचती हूँ यहाँ रखूँ तो बेटर है, मुझे कब यूज करना है, मैं कहती हूँ नहीं यहाँ रखे तो और बेटर है, नहीं मुझे लगता है यहाँ अच्छा नहीं लगेगा तो यहाँ रखते हैं तो बेटर है, नहीं इससे बेटर है तो मैं अपनी गोद में ही रखूँ, यहाँ ही रखूँ बेटर है। अब मुझे ये रूमाल रखना है, इसके लिए कितने विचार चाहिए, एक, और मैंने कितने किए, चार पाँच, वो बाकी के एक्स्ट्रा विचार क्या हो गए, व्यर्थ। तो एक कार्य के लिए जहां एक या दो विचार की आवश्यकता है या तीन की, वहां हमने अधिक कर लिए, वो है व्यर्थ, तो उसको हमें पहचानना है। आत्मा के जो मूल गुण है, जो मूल हमारा स्वभाव है कि हम शांत स्वरूप हैं, प्रेम स्वरूप हैं, हम सुख स्वरूप हैं, हम आनंद स्वरूप हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, शक्ति स्वरूप हैं, पवित्र स्वरूप हैं, ये मूल गुणों के आधार से जो चिंतन किया वो सकारात्मक। हमारी कमजोरियों के थोड़ा थोड़ा गुस्सा है, थोड़ा थोड़ा ग्रीड है, थोड़ा लोभ है, थोड़ी अटैचमेंट है, थोड़ा ईगो है, इनसिक्योरिटी है, भय है, एंजाइटी है, इनके आधार पर जो चिंतन किया वो नेगेटिव। पास्ट की चिंता की, भविष्य की चिंता की, वो है व्यर्थ, साधारण। लेकिन हर साधारण कर्म में हम कैसे अपने विचारों को बहुत श्रेष्ठ रख सकते हैं, अपने विचारों को बहुत आनंदित रख सकते हैं, वो हम यहाँ राजयोग से सीखते हैं। तो उससे क्या है, साधारण कर्म करते भी जब हमारे विचार बहुत श्रेष्ठ हैं, शांति और आनंद से भरपूर हैं, तो वो साधारण कर्म भी क्या हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है। उसमें भी हम अपने अंदर की ऊर्जाओं को जमा कर। बुद्धि क्या है, मन बहुत सारे विचार करता है लेकिन बुद्धि निर्णय लेती है, डिसीजन मेकिंग फैकल्टी, निर्णय लेने वाली, इट्स द बॉस ऑफ द इनर सेल्फ। बुद्धि एक नेत्र का काम करती है। मेडिटेशन में हम मन के द्वारा चिंतन करते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन बुद्धि के द्वारा विजुलाइज करते हैं। आप यहाँ बैठे हैं, आप में से मोस्टली अपने अपने जीवन साथी भी साथ में आए हैं, लेकिन अगर आप अपने परिवार को और सदस्यों को याद कर रहे हैं, बच्चों को और भी परिवार के सदस्यों को, तो आप याद कर रहे हैं तो मन से उन्हें देख भी रहे हैं, देख भी रहे ना। मैं कहूँ आप अपने घर को देखें, जहाँ आपकी अभी पोस्टिंग है वो स्थान को देखें, देख सकते हैं ना, देख सकते हैं। ये स्थूल नेत्रों से नहीं देख रहे हैं लेकिन मन की आंखों से, वो है बुद्धि, द इंटेलेक्ट विजुअलाइजेस। तो बुद्धि से हम क्या करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, विश्लेषण करते हैं, निर्णय लेते हैं। अब बुद्धि कैसे चाहिए, फिल्टर है, फिल्टर कैसे होना चाहिए, रोज हम चाय या कॉफी छानते हैं, फिल्टर कैसे होना चाहिए, क्लीन। अगर उसमें होल हो तो सारा चाय की पत्ती उसमें आ जाए। हमारी बुद्धि जब हमारे कमजोरियों के वश हो जाती है, क्रोध के वश बुद्धि हो जाती है, अहम के वश बुद्धि हो जाती है, हमारी इनसिक्योरिटी के वश बुद्धि हो जाती है, कंपैरिजन के वश बुद्धि हो जाती है, डाउट के वश बुद्धि हो जाती है, तो क्या हो जाता है, होल हो जाता है। तो वो सारे नेगेटिव थॉट्स क्या होते हैं, तुरंत कर्म में आ जाते हैं, बोल में, कर्म में, जीवन में आ जाते हैं, निर्णय नहीं ले पाते। तो राजयोग मेडिटेशन से और ये स्पिरिचुअल जो हमारी रोज की स्टडी है यहाँ, उससे हम बुद्धि को क्या करते हैं, स्पिरिचुअली एम्पावर करते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान की समझ, और मेडिटेशन से इसको रोज क्लीन करते हैं, सक्षम बनाते हैं। जो कर्म हमने किया वो रिपीट जब होता है वो स्वभाव संस्कार बनता है। हम कहते हैं ना, क्या करें, मेरा भाव नहीं था मेरा स्वभाव है, कहते हैं। गुस्सा हमने कर लिया, हम कहते हैं ना, मेरा भाव बिल्कुल नहीं था इसमें, इंटेंशंस वर नॉट रॉन्ग, जस्ट माय नेचर, जस्ट माय वॉइस, इट्स जस्ट माय टोन, नहीं कहते हैं ना। तो हमारा भाव और स्वभाव, स्वभाव अर्थात जो कर्म बार बार हमने किया वही हमारा बिहेवियरल पैटर्न, जिसको हम संस्कार कहते हैं, बन जाता है। सबसे सुंदर बात है, परमात्मा हमें स्मृति दिलाते हैं राजयोग के द्वारा कि आपके मूल संस्कार बहुत शुद्ध हैं, मूल संस्कार ओरिजिनल जो उन्होंने हमें दिए वो बहुत प्योर, बहुत डिवाइन है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, तो शांति का जो संस्कार है वो बहुत पावरफुल सीड है। ये अगर हमने इसको रोज चार्ज किया तो इसके आधार से हमारी क्लैरिटी ऑफ थॉट रहेगी, परख शक्ति, निर्णय शक्ति इजी रहेगी, प्लानिंग करना सहज रहेगा, फोरसाइट रखना सहज होगा, तीनों कालों को एक साथ देखना, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ एक साथ समझ कर निर्णय लेना सहज हो जाएगा। आवश्यक है ये कैपेबिलिटीज कारोबार में, आवश्यक है। दूसरा हमारा गुण है कि मैं हूं ही पवित्र स्वरूप आत्मा। तो मेडिटेशन से जब इसको हम रिचार्ज करेंगे, इसको हम नरिश करेंगे, इस गुण को, आत्मा के स्वभाव को, तो हमारे में सत्यता आती जाएगी, हमारे में ऑनेस्टी जो है, इंटेग्रिटी जो है, वो नेचुरल बन जाएगी। जो हमने सोचा वही बोला, जो बोला वही किया, ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, हमें लोगों को ट्रस्ट करना, लोगों को हमें ट्रस्ट करना सहज हो जाएगा। जरूरी है, ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। हमारा मूल स्वभाव है कि हम हैं ही स्नेह स्वरूप आत्मा। जब इसको रिचार्ज किया, इसको नरिश किया, इसको सशक्त किया, तो हमारे अंदर हरेक के प्रति शुभ भावना आएगी, अनकंडीशनल लव एंड एक्सेप्टेंस आएगा। जरूरी है, एक्सेप्टेंस जरूरी है। हमें हरेक को सम्मान देना, ये सहज हो जाएगा। हरेक के अंदर की विशेषता दिखाई देगी और उसके आधार से उनको हम सम्मान देंगे, उनके लिए शुभ भावना रखेंगे। हरेक के प्रति कंपैशन, केयर, कंसर्न रखना एज अ लीडर सहज हो जाएगा। हरेक के लिए नेचुरली एक मेंटोर बनना, उनको गाइड करना, उनको कोच करना, ये स्वभाव नेचर बन जाएगा, स्वाभाविक महसूस होगा। कहीं ना कहीं एक जो आप लीडर बनते हैं, आपका जो टीम होता है, आपकी टुकड़ी जो होती है, कहीं ना कहीं एक मदर भी आप बनते हैं उनके। नहीं, आप उनको नर्चर करते हैं, उनके सेल्फ स्टीम को, उनकी क्षमताओं को, उनके कॉन्फिडेंस को। जरूरी है, जरूरी है नर्चर करना, तो वो रोल आपके लिए सहज हो जाता है। मैं हूं ही ज्ञान स्वरूप आत्मा। तो ये जब हम ऊर्जा इसको देते हैं, इसको रिचार्ज करते हैं, हमारे मूल स्वभाव को, तो हमें इंट्यूटिव बनना सहज हो जाता है। सब कुछ हम अंदर से समझ सकेंगे, इंट्यूटिव बनेंगे, क्या कार्य किस समय पर करना है वो सहज हो जाएगा। समझना, राइट निर्णय लेना। हम हैं ही शक्ति स्वरूप आत्मा, तो वो तो आपके पास बहुत सारे गुण है ही। परमात्मा ने गिफ्ट दी है आपको करेज की, डिटर्मिनेशन की, लेकिन इसको नरिश करने से थोड़ा थोड़ा, कभी कभी जो फियर और एंजाइटी आ जाता है वो कम होता जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अंदर से निश्चिंत और हिम्मतवान हम हो जाएंगे, परमात्मा वो सर्वशक्तिवान के साथ का अनुभव नेचुरल हो जाएगा। हमारा छठा गुण है कि हम सुख स्वरूप हैं, हैप्पी सोल। ओरिजिनली ये हमारा स्वभाव है। इसको जब हम सशक्त करेंगे, मेडिटेशन से रिचार्ज करेंगे, तो लाइट रहना, इजी रहना, सरल रहना, जो कल हमारे चीफ गेस्ट कह रहे थे, सरलता जो है बहुत सहज हो जाएगी। हमें बहुत आनंदित रहना या उमंग उत्साह में रहना सहज होगा। जरूरी है कार्य में, आपके कार्य बहुत डिफिकल्ट क्लाइमेटिक कंडीशंस में होते हैं, डिफिकल्ट ह्यूमन कंडीशंस में होते हैं, बहुत सारी चुनौतियों के बीच में अपने मन को उमंग उत्साह में रखना, सुख स्वरूप रहेंगे तो सहज हो जाता है। आनंद स्वरूप, आनंद स्वरूप अर्थात अंतर की संतुष्टता। तो ये जब अंदर हम एम्पावर करते हैं, तो अंतर से जहां हम हैं, जो रोल प्ले कर रहे हैं, जो हमारे पास है, उसमें हम बहुत संतुष्ट रहते हैं। जहां संतुष्टता आती जाती है, वहां विकास सहज हो जाता है, क्योंकि रेस्टलेसनेस नहीं रहती, सेल्फ में जो डाउट है वो नहीं रहता है, तो इसलिए प्रगति बहुत सहज हो जाती है। और हम देखते हैं कि ये संस्कार बनते कहां से हैं, तो कुछ संस्कार हमें अपने पास्ट के जीवन से प्राप्त हुआ है। इसलिए जब आप बच्चों की पालना करते हैं, तो आप देखेंगे अगर परिवार में दो बच्चे हैं, तो दोनों की पालना आपने एक ही ऐसी की, लेकिन संस्कार उनके अलग अलग हैं। कोई बच्चा है बहुत शांत है, इंट्रोवर्टेड है, उसकी अनेक अलग विशेषताएं हैं, अलग विशेषताएं। कोई है बहुत एक्सट्रोवर्टेड है, बहुत सक्षम है बोलने में, आगे में, लीडरशिप में, ये वो, उसकी अलग विशेषताएं। तो हम देखते हैं हरेक के संस्कार अलग अलग, क्योंकि पास्ट के जर्नी से हम लाए हैं। आजकल छोटे बच्चों के हम टीवी में भी देखते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं चाइल्ड प्रोडिजीज, नहीं, मैथमेटिक्स बहुत अच्छी तरह से कर रहा है, कलाएं जो है, डांस है, गीत गाना, ये सब कलाएं भी बहुत सहज हो रही हैं। तो वो हम देखते हैं कि पास्ट की जर्नी से आत्मा ले आई है, फैमिली परिवार से हमें संस्कार मिलते हैं. जिस परिवार में हमने जन्म लिया हमारे माता पिता से हमें संस्कार मिलते हैं. तीसरा हमारे मित्र. अ मैन इज नोन बाय द कंपनी कीप्स. आपने फौज में आर्म फोर्सेस में भी किन्हों के साथ आपकी कंपनी रही है, किन से आपने लेन देन हमेशा की है, किन से बातचीत की है, किन से आपने प्रेरणा ली है, किन से आपने संबंध फ्रेंडशिप का रखा है, उसके आधार से आपके अंदर वो संस्कार आते जाते हैं. फिर समाज, जिस वायुमंडल में एनवायरमेंट में हम रहते हैं उसका भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है. आप आर्म फोर्सेस में हैं तो आपके बहुत सारे संस्कार वहां से भी आपके अंदर मजबूत हो जाते हैं. और सबसे महत्वपूर्ण है हमारे ओरिजिनल. ये फिफ्थ फोल्डर जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो हमारा पावर है, वो उन संस्कारों में हमारी सारी शक्ति है. तो हम देखते हैं कि ये बाकी चार में थोड़ा ऊपर नीचे हो भी सकता है और है भी. नहीं, सोसाइटी में तो हमने कुछ अपने अंदर थोड़ा थोड़ा नहीं ईगो और एंगर और फियर और कहाँ कहाँ से डाउट सेल्फ में और में ये थोड़ा थोड़ा डाल दिया है, अक्वायर कर लिया है. लेकिन गुड न्यूज है कि हमारा इनेट जो है वो बहुत प्योर है, वो बहुत शक्तिशाली है. जो भी है बाकी एक्वायर्ड है, प्राप्त किया हुआ है. अब राजयोग से हम क्या करते हैं, परमात्मा हमें बहुत सुंदर विधि सिखाते हैं कि आंतरिक ये ओरिजिनल गुणों को शक्तिशाली बना लो, इसकी स्मृति में रहकर हर कार्य करो. तो क्या होगा, सारा दिन जितना समय हम ये स्मृति रखते हैं कि मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं शक्ति स्वरूप हूँ और कार्य कर रहे हैं, तो क्या होगा, वो गुण वो शक्तियाँ हमारे बोल हमारे व्यवहार हमारे कार्य में यूज होंगी. तो मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ ये स्मृति से हम कार्य कर रहे हैं और शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ ये स्मृति से कार्य कर रहे हैं. तो हमारे अंदर में जो थोड़ा थोड़ा गुस्सा है, जो भय है, जो इरिटेशन है, वो क्या होगा उस समय कम रहेगा. क्योंकि कोई भी हमारी कमजोरियां जो है वो अंधकार के रूप में है. जैसे ये कमरे में को ठीक करने के लिए जो एक्सरसाइज हुआ उसके पहले यहाँ जो ब्रदर की जिम्मेवारी थी संभालने की, वो जब यहाँ आए तो यहाँ अंधकार था ना, अंधकार. तो फिर अब इसमें लाइट लाना था और अंधकार को निकालना था. तो अगर मैं उनके साथ हूँ और मैं संभालने वाली हूँ और मैं उनको कहूँ चलो हम बड़े बड़े यहाँ कंटेनर्स लाते हैं, सारा अंधकार भर के बाहर फेंकते, तो पॉसिबल है? कितनी भी मेहनत करे पॉसिबल है? क्योंकि अंधकार का अपना अस्तित्व नहीं है. अंधकार रोशनी के अभाव को कहा जाता है. डार्कनेस इज एब्सेंस ऑफ लाइट. द ओनली वे टू ओवरकम डार्कनेस इज टू ब्रिंग इन लाइट. तो एक ही विधि है रोशनी को लाने के लिए. रोशनी को लाना ही अंधकार को मिटाना है. तो हमारी जो भी कमजोरियां हैं, चाहे वो पास जीवन यात्रा से है, चाहे परिवार से प्राप्त हुई, चाहे मित्र, चाहे समाज से हमने लिया, जो भी है, लेकिन वो अंधकार है. अब उसको अगर हमें परिवर्तन करना है तो क्या करना है, रोशनी को लाना है. सहज है. तो रोशनी को अपने अंदर बढ़ाना बहुत सहज है. अंधकार से जितना जूझेंगे, मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे ये नहीं करना है, मेरे में ये फियर नहीं होना चाहिए, बार बार आप सोचते जाओ और ही हम क्या होंगे, थक जाएंगे मानसिक रूप में और स्ट्रेस में आ जाएंगे. मैं अपने आप को कहूँ मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे शांत रहना चाहिए, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और मैं ये संकल्प करूँ कि मैं हुई शांत स्वरूप आत्मा. कौन सा संकल्प सुखदायी है, आत्मा उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज इट्स अ फीलिंग ऑफ सेल्फ एस्टीम, मुझे बहुत खुशी होती है उससे. तो इसलिए ये राजयोग के द्वारा परमात्मा कितनी सुंदर सहज विधि सिखा देते हैं. बस आपको क्या करना है, अपने ओरिजिनल गुण और शक्तियों को बढ़ाना है, बाकी कमजोरियां स्वतः ही धीरे धीरे समाप्त होगी. लाइट आने से अंधकार को समाप्त करने में कितना समय लगता है, स्वतः होता है, सहज. मेडिटेशन करने से जब हम ये गुण और शक्तियों को अपने अंदर बढ़ाते हैं तो ऑटोमेटिकली हम अपने आप को ज्यादा स्वस्थ बना रहे हैं. दैट इज वाई राजयोगी लाइफस्टाइल इज अ हेल्दी लाइफस्टाइल, मन के भी स्वास्थ्य के लिए लेकिन तन के लिए भी। आप में से तो कई डॉक्टर्स भी हैं, मेडिकल फील्ड में भी आर्मी या कोई भी आर्म फोर्सेस में है, तो आप जानते हैं कि हमारी सबसे ज्यादा बीमारियां जो है साइकोसोमैटिक है। बीच में हम देखते हैं एक डॉक्टर हमारे मेडिकल कॉन्फ्रेंस में अपना प्रेजेंटेशन दे रहे थे और उन्होंने कहा कि जो भी साइंटिफिक रिपोर्ट्स या जो भी अभी उन्होंने इन्वेंशन ये रिसर्च किया है उसके आधार से वो समझते हैं कि एक तिहाई 1/3 हीलिंग जो है हमारे विचारों से होता है। आजकल उसमें बहुत सारे बुक्स भी हैं, प्लेसिबो इफेक्ट और बहुत सारे रिसर्च उसमें हुआ है। 1/3 हीलिंग इज थ्रू आर लाइफ स्टाइल, जीवन शैली, स्वस्थ जीवन शैली। और उन्होंने कहा 1/3 हीलिंग हम मेडिकल ट्रीटमेंट से कर सकते हैं, तो 2/3 हीलिंग किसके पास है, कौन कर सकता है? अपने शरीर को स्वस्थ रखने की किसकी जवाबदारी हो जाती? हमारी। तो इसलिए 2/3 हीलिंग तो हम ही कर सकते हैं। तो उस रूप में हम देखते हैं शांति जो है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को हील करता है, स्नेह जो है वो हमारे कार्डियक वैस्कुलर सिस्टम को नरिश करता है, हील करता है, प्योरिटी जो है वो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम जो हमारा ब्लड और स्किन है उसको नरिश करता है, हील करता है, खुशी जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ही तंदुरुस्त बनाता है, सक्षम बनाता है। इसलिए हम कहते हैं ना खुशी से खाओ। हमारी दादी माँ हमेशा कहती थी ना मुंह बना के नहीं खाओ, खुशी से खाओ, पच जाएगा छोटेपन में। तो खुशी जो है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को नरिश करता है, पावर, आंतरिक बल, आंतरिक शक्ति जो है, मनोबल, हिम्मत जो है वो हमारे स्केलेटल सिस्टम को, मसल्स बोन्स को नरिश करता है, ज्ञान जो है वो हमारे न्यूरो सिस्टम ब्रेन को नरिश करता है, और आनंद स्वरूप की जो हमारी स्थिति है वो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम, हमारे हॉर्मोन्स जो है, हमारे हैप्पी हॉर्मोन्स को हमेशा सिक्रीट करने में हमें मदद करते हैं। तो यहाँ भी बहुत अच्छी केमिकल फैक्ट्री है ब्रेन में। जितना हम आनंदित रहते हैं तो वो सेरोटोनिन जो भी हमारे डोपामाइन जो हमारे हैप्पी हॉर्मोन्स है वो सही मात्रा में समय पर सिक्रीट होते रहते हैं। और आपको कभी जो हमारे साइंस लेक्चर्स होंगे उसमें भी बताया जाएगा कि सबसे अच्छा समय ये सिक्रीट होने का अर्ली मॉर्निंग है, ब्रह्म मुहूर्त का समय। इसलिए मेडिटेशन उस समय सबसे पावरफुल माना जाता है। तो चलिए हमने स्वयं के बारे में समझा थोड़ा, इसको जाना, अब हम इसको अनुभव करें। मेडिटेशन में जब हम फर्स्ट स्टेप ही है हमारा स्वयं को अनुभव करना, क्योंकि जब हमने कहा कि हमें मेडिटेशन करना है शांति के लिए, तो शांति किसको चाहिए? शरीर शांत हो चुका है नहीं, इसलिए उसको तो हमने मृत्यु का नाम दिया, शरीर शांत होना माना मृत्यु। तो ये आत्मा की शांति की बात है। तो हम स्वयं को कुछ समय के लिए मन की आंखों से हम इस सुंदर दिव्य लाइट को विजुअलाइज भी करेंगे, धीरे धीरे इसको अनुभव करेंगे। शुरू में विजुअलाइज करना इतना इजी नहीं है क्योंकि हमने कभी इसके को एक्सपेरिमेंट किया नहीं, तो जो चीज हमने अब तक एक्सप्लोर नहीं किया, एक्सपेरिमेंट नहीं किया, तुरंत उसमें हमें अनुभव होना जरूरी नहीं है, थोड़ा समय लगेगा, तो कोई हर्जा नहीं। आप में से कई विजुलाइज कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे, कई आप में से शायद मन को एकाग्र नहीं रख सकेंगे, कोई बात नहीं। बहुत समय से हमने मन को ये दिशा दी नहीं, मन को ये बातें नहीं समझाई, तो अब प्यार से धीरे धीरे समझा रहे हैं। तो बच्चे ने चलना शुरू किया तो क्या करते हैं, हम इनकरेज करते हैं, उसका हाथ पकड़ कर धीरे धीरे उसको चलाते हैं। ऐसे हमें अपने मन को मेडिटेशन में हमेशा इनकरेज करना है। तो अगर कभी मन यहाँ वहाँ चला भी गया तो कोई हर्जा नहीं, फिर प्यार से उसको फिर से यहाँ ले आना है। ये 3-4 दिन आपके पास बहुत सुंदर मौका है क्योंकि यहाँ का शांति का वातावरण, यहाँ का जो शांति का वाइब्रेशन है, यहाँ बहुत सारे योगी रोज सुबह 2 बजे से लेकर मेडिटेशन करते हैं, इसलिए वो वाइब्रेशंस मेडिटेटिव हैं। तो यहाँ इसका अभ्यास आपके लिए सहज हो जाएगा। कुछ समय के लिए मन की आंखों से हम अपने आप को यहाँ इस हॉल में अकेला देखें, इस शांति के वायुमंडल में हम निश्चिंत होकर बैठे हैं, मन की आंखों से अपना बाह्य स्वरूप देख रहे हैं। हमारा शरीर हमारे लिए कितना वैल्यूबल है, परमात्मा की सबसे महत्वपूर्ण गिफ्ट है। हम दिल से ईश्वर को धन्यवाद करते हैं, आपने हमें स्वस्थ शरीर दिया है। हम जानते हैं कि शरीर मेरा है, इसको चलाने वाली मस्तक के मध्य में, प्रकृति के मध्य में मैं आत्मा विराजमान हूं। मन की आंखों से अपने उस सुंदर स्वरूप को देखें, पॉइंट ऑफ लाइट, स्पार्क ऑफ डिवाइन एनर्जी। जैसे आकाश में अनेक सितारे रात्रि को टिमटिमाते हैं, ऐसे ही एक सुंदर सितारा रुकुटी के मध्य में चमक रहा है। मन की आंखों से अपने सुंदर स्वरूप को देखें, महसूस करें कि मैं इस शरीर से अलग, इस शरीर को चलाने वाला, इसको दिशा देने वाला, आंखों द्वारा देखने वाला, कानों से सुनने वाला, मुख से बोलने वाला, शरीर की हर कर्म इंद्री से कार्य कराने वाला मालिक हूं। मैं आत्मा अजड़ अमर अविनाशी हूं, इटर्नल एनर्जी, इमॉर्टल हूं, समर्थ हूं। मैं शांत स्वरूप हूं, अंतर की शांति को हम महसूस कर रहे हैं। हमने जान लिया है कि शांति मेरा स्वभाव है, मेरा निज स्वभाव, नेचुरल स्टेट ऑफ माइंड। मुझे शांति के लिए कहीं बाहर में जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं जब चाहूं अपने आप को अपने कारोबार और शरीर से थोड़ा सा न्यारा करके इस आत्मिक मनोस्थिति में स्थित रख सकता हूं, अंतर की शांति को अनुभव कर सकता हूं। मन की आंखों से कुछ समय के लिए अपने परिवार को देखें, आपके जीवन साथी को, बच्चों को, माता पिता को, परिवार के सदस्यों को, मन की आंखों से उनके मस्तक के मध्य में उस सुंदर आत्मा को देखें। वो भी शांत स्वरूप आत्माएं हैं, दिल से उन्हें प्यार और शुभकामनाएं भेजें। परिवार के हर एक सदस्य को दिल से धन्यवाद भी करें, उनका सहयोग, उनका प्यार आपके जीवन को कितना सुखमय बना रहा है, आगे बढ़ा रहा है। मन की आंखों से देखें परमात्मा की शक्तियां, परमात्मा का प्यार एक सर्किल ऑफ डिवाइन लाइट बनकर आपके परिवार के हर एक सदस्य के साथ है, जीवन साथी के साथ, बच्चों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ। उन्हें सुरक्षित रख रहा है, उन्हें स्वस्थ बना रहा है। मन की आंखों से अब थोड़े समय के लिए अपने बड़े परिवार को देखें, जहां आपकी पोस्टिंग है, जिस मिलिट्री फोर्स से आप आए हैं उसको देखें। वहां आपके डे टू डे इंटरेक्शंस, जो आपके कलीग्स हैं, सीनियर्स हैं, आपकी टीम के हर एक व्यक्ति को देखें, सोल्जर्स को। मन की आंखों से देखें कि उनके मस्तक के मध्य में वो सुंदर आत्मा चमक रही है, वो भी शांत स्वरूप आत्माएं हैं। हर एक को दिल से प्यार से शुभकामनाएं भेजें, दिल से हर एक के प्रति सम्मान और रिस्पेक्ट की भावनाएं भेजें, हर एक की विशेषताओं को देखें, हर एक के प्रति दिल से दुआएं दें, कि वो सदा आगे बढ़ते रहे, वो सदा स्वस्थ रहे। मन की आंखों से देखें कि परमात्मा की दुआएं एक सर्कल ऑफ लाइट बनकर, सुरक्षा कवच बनकर हर एक के साथ है, आपके साथियों के साथ, आपके कलीग्स, सोल्जर्स, आपके सीनियर्स, आपका सारा मिलिट्री फोर्स सबके साथ है। दिल से हर एक के प्रति धन्यवाद करें, उनका सहयोग, उनका योगदान आपको आगे बढ़ा रहा है। अब मन की आंखों से इस विश्व को देखें। सारे विश्व को जब हम देखते हैं, अलग अलग राष्ट्र, अलग अलग धर्म, अलग भाषाएं, अलग रंग, अलग कल्चर्स, लेकिन हर एक के मस्तक के मध्य में वो दिव्य लाइट है, सुंदर आत्मा है, शांत स्वरूप आत्मा है, कि विश्व भी एक परिवार है। दिल से हर एक के प्रति दुआएं भेजें, शांति के वाइब्रेशंस भेजें, हर एक के जीवन में सदा उमंग हो, उत्साह हो, खुशी हो, शांति हो, हर एक आगे बढ़ता जाए। इस समय सृष्टि में बहुत सारी आत्माएं निराशा में है, दुख में है, तनाव में है, भय में है, चिंता में है। दिल से उनको शुभकामनाएं भेजें, शक्ति भेजें, परमात्मा की हीलिंग एनर्जी हर एक को शक्ति दे रही है। आपके दिल से जब आप उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो आपका मन, आपका हृदय उन शुभ भावनाओं से भरपूर हो रहा है। परमात्मा की असीम शांति, शक्ति आपके अंदर समा रही है। अपने आप को भी देखें, परमात्मा की दुआएं एक सुरक्षा कवच बनकर मेरे साथ है। अपने आप को शक्तिशाली, समर्थ, निश्चिंत अनुभव करते हुए, ब्लेस्ड फील करते हुए, फिर से आप अपने आप को यहां इस संगठन में देखें। धीरे से अपने आंखों को खोल दें, अपने आप को यहां इस संगठन में देख रहे हैं, और अंतर में आपने अपने मन को उस असीम शांति से, शक्ति से, और हर एक के प्रति शुभ भावनाओं से भरपूर किया है। ओम शांति, शांति, शांति,
ओम शांति। सभी को अच्छा लगा? दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपको सेल्फ रियलाइजेशन करवाया। आपने देखा, सेल्फ रियलाइजेशन से हमारी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है, डिसीजन मेकिंग पावर भी बढ़ जाती है, और लव एंड रिस्पेक्ट देना इजी हो जाता है, नेचर में आ जाता है। स्वयं को भूलना ही सभी समस्याओं का मूल आधार है, और स्वयं को जानना, उस स्वरूप में स्थित होना ही सभी समस्याओं का समाधान है। आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज हमारी संस्था की, इस यूनिवर्सिटी की जो फर्स्ट चीफ थी, जो सबसे छोटी आयु में संस्था की चीफ बन गई, जिनका असली नाम राधा था, जिनको मम्मा का टाइटल मिला और सभी बड़े प्यार से उन्हें मम्मा कहते हैं, आज उनका स्मृति दिवस है, तो हम दीदी से रिक्वेस्ट करेंगे कि उनके विषय में भी थोड़ा सा बताएं। ओम शांति।
जैसे दीदी ने आपको बताया कि मम्मा जो है हमारी फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड रही 1936 में, जब पिताश्री ब्रह्मा बाबा के बारे में आप थोड़ा समाचार, पूरा उनकी हिस्ट्री सुनेंगे ही बाद में, तो उनको जब परमात्मा ने निमित्त बनाया, तो मम्मा बहुत छोटी कुमारी के रूप में उस समय इस ज्ञान के संपर्क में आई। लेकिन उनकी विशेषता थी कि जैसे उन्होंने ज्ञान सुनना शुरू किया, उनकी शुरू से विशेषता रही कि जो उन्होंने सुना उन्होंने उसी समय धारण कर लिया। तो उस विशेषता के आधार से बहुत कम समय में ही उन्होंने अपने व्यक्तित्व में वो संपूर्ण दिव्यता को धारण कर लिया। उनकी आयु तो सिर्फ 17 इयर्स की थी जब उनको ये जिम्मेवारी मिली, पूरे संस्था के लिए दिशा देना है, उनको एडमिनिस्ट्रेशन के लिए निमित्त बनाना है। ये भी उस समय 1936 में जब माताएं को कोई भी कन्याएं कोई समाज के कोई विशेष कार्य में उनको कहीं इन्वॉल्व नहीं किया जाता था, ऐसे वातावरण में ऐसे समय पर परमात्मा ने उन्हें निमित्त बनाया और मम्मा ने बहुत कुशल रूप से प्रशासन किया। तो उनके व्यक्तित्व में वो दिव्यता और गंभीरता थी, जो शरीर की आयु तो बहुत छोटी थी लेकिन संस्कार के रूप में दिव्यता इतनी थी, पालना के संस्कार इतने सुंदर थे कि हर एक उनको मिलते ही महसूस करते थे कि ये हमारी स्पिरिचुअल मदर है। और वो प्यार की पालना के साथ साथ उनके जीवन में उन्होंने जो वो ज्ञान सुना रही थी वो 100% उसको पहले फॉलो किया हुआ था। तो जो हमारी रेगुलर स्पिरिचुअल स्टडी, जिसको हम आध्यात्मिक भाषा में ज्ञान की मुरली कहते हैं, मम्मा जो है जो आज की स्पिरिचुअल स्टडी होगी सुनेंगी और उसको सारे दिन के अंदर ही पूरा एब्जॉर्ब अपने जीवन में करके उसको फिर इतना सुंदर विश्लेषण करके शेयर करती थी। एक एक पॉइंट को प्रैक्टिकल में हमारे लाइफ में कैसे हमें उसको प्रैक्टिस करना है, वो क्लैरिटी मम्मा की बहुत थी। इसलिए मम्मा को सरस्वती माँ के रूप में, ज्ञान की भी मूर्ति के रूप में हमने देखा। तो आज उसके स्मृति दिवस में हम मम्मा को बहुत प्यार से याद करते हैं और वो विशेषताओं को अपने अंदर भरते हैं। हम महसूस करते हैं कि परमात्मा जब ऐसा रोल देता है तो ऑटोमेटिकली हर एक आत्मा को परमात्मा वो शक्ति भी दे देता है। और मम्मा ने वो शक्ति को अपने अंदर भरने का 100% संकल्प लेकर उनको ने उसको धारण किया। इसलिए मम्मा को कभी भी ये नहीं था कि आयु छोटी या मैं कैसे ये कार्य करूं। जो परमात्मा ने उनको डायरेक्शन दिया पिताश्री के द्वारा, कहा ये करना है, और मम्मा ने उसको प्रैक्टिकल में किया। तो एक बहुत सुंदर हमारे सामने एग्जाम्पल रही मम्मा कि प्रैक्टिकल में जो परमात्मा हमारे प्रति शुभ उम्मीदें रखता है, शुभ संकल्प रखता है कि ये हमें करना है, तो ऑटोमेटिकली परमात्मा उस रूप से शक्ति भी देता है, हमें कहता भी है, डायरेक्शन भी देता है और हमें एम्पावर भी करता है। तो हमें भी हर परमात्मा की ऐसी जो गाइडेंस है उसको अपने अंदर प्रैक्टिकल में धारण करना है और बहुत प्यार से औरों की पालना करनी है। तो विशेष जो एक लीडरशिप रोल माना ही सस्टेन करना, नर्चर करना, पालना देना, तो वो पालना देने का रोल मम्मा की विशेषता थी कि अगर कोई भी दो बहनें, क्योंकि संगठन 350 का था उसमें भी बहनें ज्यादा थी, तो हम देखते हैं उनकी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत थी, तो कोई भी बात अगर होती भी थी बातों में, विचारों में अंतर और मम्मा के सामने आती भी थी बात, तो मम्मा इतना प्यार से सुनती थी और उनको इतना सुंदर रूप से समझाकर उनको रियलाइज करा लेती थी कि वो खुद को बदलने के लिए वो अंदर से दृढ़ संकल्प कर लेते थे। और मम्मा की दृष्टि उनके लिए हमेशा समान रहती थी, ऊंची भावनाएं रहती थी। तो ऐसे बहुत सारे लीडरशिप स्किल्स हमने मम्मा में देखे जो हम आज उनको याद करते हुए अपने अंदर भरने की कोशिश करते हैं और उस प्यार से हम याद करते हैं। तो उसके निमित्त आपको भी आज हम प्यार से मम्मा के स्मृति से फल देंगे और उसके साथ साथ ये संकल्प जरूर देंगे कि हम भी इन ज्ञान को, जो बातें हम सुन रहे हैं उसको अपने अंदर धारण कर लेते हैं, तो आपकी लीडरशिप रोल जो आपका है ही कारोबार में और परिवार में भी, तो वो आप बहुत प्यार से, सक्षमता से, लव और लॉ का जो बैलेंस है उसको रखते हुए आप वो प्ले कर सकेंगे। तो उस रूप से हम अम्मा को बहुत प्यार से याद करते हैं। ओम शांति।